वमा आतई तुम्हें रिबा, और जो कुछ तुम देते हो सूद पर, क्यों? लियरबु वफी अमवाल इन्नासी, ताकि बढ़ता रहे लोगों के माल में से। तो कहा सुन लो, फला यरबू इंदल्लाह, तो अल्लाह के हाथ तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ता, अल्लाह के हाथ तो ये बढ़ता नहीं है। तुम कहते हो ये बढ़ रहा है, तो सूद का लेन देन चीज को बढ़ाता नहीं है, ना लेने वाले का बढ़ रहा है ना देने वाले का बढ़ रहा है, असल खैर दोनों को नहीं मिलनी। इसके बरक्स वमा आतई तुम इन ज़कातिन तुरीदू न वछल्ला, और जो तुम ज़कात देते हो इससे कि तुम चाहो अल्लाह की रजा, अल्लाह का चेहरा, फउलाइक हुमुल मुदईफून, तो यही वो लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ अपने माल को दुगने का दुगना करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। दो चीज़ों का तकाबुल आ गया, सूद देते हो लेते हो ताकि दौलत बढ़े, माल बढ़े, घर बढ़े, का फला यरबू इंद अल्लाह। इसकी सिंपल तफसीर तो आपको लफ सूद से ही समझ आ रही है। और मक्की सूरत में सूद का जिक्र ये पहली आयत है तरतीबे नजूल के एतबार से, जिसके जरिए से सूद के लिए लोगों का जहन बनाया गया कि अब ये हराम होने वाला है। मक्का में हर ट्रांजेक्शन जो थी उस पर सूद चलता था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ अपने तदरीज के असूल और नासिख और मनसूख के हुक्म को सामने रखते हुए बता दिया कि ये अब नहीं बढ़ेगा, जहन तौर पे लोगों को बता दिया कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये नहुसत है, दुनिया में भी खराबी होगी बाद में भी होगी। हजरत इब्ने अब्बास और चंद लोग कहते हैं कि रिबन से मुराद जो है सूद है, यानी ब्याज है। ठीक है, जहन बना दिया, जो अक्लमंद थे वो समझ गए कि अब जरूर सूद हराम होगा, और उसकी हकीकत हम पढ़ चुके हैं 275 सूरह बकरा में, डिटेल से बातें इस पर हो चुकी हैं कि किस तरह से सूद लोगों के लिए एक नासूर है। देखिए लफ सूद क्या है, काला, अस्वद से, अस्वद काले को कहते हैं ना, सूद के काला धन। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए कि ये वो सारी डिटेल जो आपको पीछे दी थी दोबारा नहीं दूंगी, कि ये गिल्टी है असल माल के ऊपर, हीप ऑफ दौलत, ठीक है, अब वो असल माल को भी सारा खींच लेती है। अगर आप इसको सामने रखें तो किसी की मजबूरी बिकती है ना, एक वो शख्स है गरीब बेचारा जो रोटी को भी तरस रहा है, फिर बेचारा सूद के लेन देन में फंस गया, और एक तरफ सेठ साहब बैठे हुए जो पहले ही गले में दौलत गिनते रहते हैं, फिर कहते हैं कोई कस्टमर आए, पैसे से पैसा खरीदते हैं वो, सूद के इंटरेस्ट क्या मुसीबत है, पैसे लेकर, ये देखिए ना, मैं बाजार गई तो मैंने पैसे दिए तो ये ग्लास ले लिया, मिसाल है, ये तो होता है ना, आप बाजार गए और आपने अपना बैग ले लिया, ये माइक खरीद लिया, लैपटॉप खरीदा, ये तो मैं सूद के पैसे ले जाओ, यानी मिसाल है कि ये 10 पाउंड का नोट है, मैं बाजार जाऊं और मैं कहूँ ये 10 पाउंड का नोट ले लो और मुझे इसके बदले में 10.25 पाउंड दे दो, ये है सूद। पैसों से पैसे खरीदते हैं, और आपको तो दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज और मनी एक्सचेंज पे कितने बिजनेस चल रहे हैं आज, यानी आने पाई पे बाज दफा ट्रांजेक्शन बदल जाती है ना, आज का रेट कल का रेट इस महीने का रेट सबको पता है। आज का रेट अगर बिल फॉर डॉलर और पाउंड का 5-6 का है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम 6-7 दे दें, हम कहेंगे मार्केट का रेट ये है जी, बैंक का रेट ये है, सबको समझ आती है। जब सूद की बात आती है तो लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि भाई आपको क्या हक है कि आप मेरे से 10 पाउंड ले रहे हैं और जवाब में आप मुझे कह रहे हैं कि 10 पाउंड दो, इट्स इम्पॉसिबल, ये सूद है। अल्लाह ताला ने इसको कह दिया फला यरबू इंदल्लाह। और याद रखिए सूद पे की हुई ट्रांजेक्शंस, घर और जो कुछ भी है, कभी उसमें बरकत नहीं होगी। उलमाए कराम कहते हैं सूद का पानी जिस चीज में लग जाए वो 40 साल से ज्यादा नहीं चलती, उसके अंदर वो जंग की तरह खा के रह जाता है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डूब जाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डूब जाती हैं, क्योंकि उसमें नाजायज चीज लग गई। किसी और ने कहा कि सूद क्या है, नाजायज बच्चा, उसको जितनी जल्दी दफन कर दो फायदा होगा। अब सूद के बच्चे को पूछो किधर रखूं, इसको नेकी में लगा दूं, गुनाह में लगा दूं, चलो ले लो तो उधर लगा दो, कर दो तो ये कर दो, तुम्हारी मर्जी है। कोई अपनी ऐसी चीजों को दूसरों को दिखाता तो नहीं है, तो जरूरत है इस बात की कि इसकी शिद्दत को समझा जाए। ये तो है इसकी बिल्कुल जाहरी तफसीर, और अगर ज़कात बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आप सूरत रूम का थीम देखें ना, पहला ही सबक अरूज और जवाल, एक तरफ रूमी थे और ईरानी थे, उनका गलबा, इधर सूद और ज़कात का तकाबुल है, पीछे आपने देखा है दुनिया का और आखिरत का तकाबुल है, शिर्क और तौहीद का, कि बाहर जो तुम्हें दुनिया के हालात दिखते हैं कामयाबियों के सर्वाइव करने के, ये दुरुस्त नहीं है, असल चीज वही है कि जो अल्लाह ताला की है। अब ये एक बात तो वाज़ेह हो गई, लेकिन इस आयत की उलमाए कराम ने एक और तफसीर भी की है, कहते हैं कि पिछली आयतों से अगर हम इसको जोड़ें जो कि हम पढ़े फातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, تو کہتے ہیں وما آتئی تو میں ربل یربو فی اموال الناس سے مراد تحفہ ہے، گفٹ. کیسے پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو کوئی مال یا تحفہ اس نیت سے نہ دو کہ کل تم اس سے بڑھا کر لو. سورہ مدثر میں بھی ہم پڑھیں گے لا تمنن تستکثر، یعنی تحفے کے بارے میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی وَإِذَا خُشِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، سورۃ النساء کی آیت ہے. لیکن یہاں دوبارہ اب اس پہ بات ہوتی ہے کہ سود کی طرح تحفے کو سود نہ بنا لو. اب آپ دیکھیے کہ انسان جب ایک دوسرے کو لین دین کرتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں. جب کوئی قرض دیتا ہے تو اس میں سچویشن لکھ لیں، آپ کو یہ آیت بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے قرض دینے والا اور ایک لینے والا. اس ڈیل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب آپ قرض دے رہے ہیں تو جو دے رہا ہے وہ اس امید سے دیتا ہے نا کہ کل مجھے واپس مل جائے گا، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ خود کو زیر بار سمجھتا ہے. یعنی قرض کیا ہے کہ دینے والا دیتے وقت سوچتا ہے کہ کل مجھے واپس ملنا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے کل ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی قرض کی. دوسری صورت کیا ہے؟ بھیک مانگنا، بیگنگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گداگری. جب کوئی غریبی کی وجہ سے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ آپ کی نظروں میں ڈیگریڈ ہوتا ہے. پہلے بےچارا اپنی انا کو مارتا ہے، غریب ہوتا ہے، اور وہ آپ کی نظروں سے گر گیا. مانگتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں، یہ بھی صورت لکھ لیں. ایک تیسری صورت ہے دینے کی جس کو آپ تحفہ کہتے ہیں. اب اگر آپ کسی کو تحفہ اس طرح سے دے جیسے کوئی قرض دیتا ہے کسی کو واپس لینے کے لیے، تو صورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیا، اب آپ مجھے بھی دیں. تحفے کے بارے میں جو فقہ ہے نا اس کو سمجھ لیجئے. نمبر ایک، تحفہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، امید نہیں ہوتی اس میں کہ آپ کو کسی خاص موقع پہ امید ہو کہ جو آئے گا وہ تحفہ لے کر آئے گا. ہمارے ہاں کچھ ٹریڈیشن بن گئی، کسی کے گھر گئے تو پہلی دفعہ گئے تو تحفہ لے گئے. شادی میں بغیر تحفے کے کیسے جائیں؟ نیا بچہ پیدا ہو گیا، آپ اس کو دیکھنے ہی نہیں جا رہے کیونکہ تحفہ نہیں ہے، چاہے وہ 6 ماہ کا بےچارہ ہو جائے آپ نہیں جا پا رہے، مجبوری ہے. شادیوں میں تحفے دکھاوے کے، یہ بڑی کے، یہ جہیز کے، یہ رشتہ داروں کے کپڑے، یہ تحفے. تحفے اور رسم کا فرق سمجھ لیں. تحفہ کیا ہوتا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، خوشی کے لیے، آپ کی کسی سے بہت ہی ایسوسیشن ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، کوئی بات نہیں تحفہ دو. اللہ کے نبی کہتے تھے تحادو و تحابو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جب کوئی تحفہ پیش کرتا آپ قبول کرتے تھے، لیکن صدقہ پیش کرتا تھا تو آپ قبول نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وہ مال دینا جس کے بدلے میں کچھ آپ دوسرے سے حاصل کریں، یعنی ایسا تحفہ دینا کہ آپ مجھے یہ تحفہ دیں تاکہ میں پیپر میں آپ کے نمبر زیادہ کر دوں، اس کو رشوت کہتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ سے ٹیچرز کو تحفہ لیتے وقت اس بات کا بھی خطرہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس تحفے کے پیچھے وہ اب یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ذرا آپ ہمارے اوپر نظر نرم کر دیں، ہمارا زیادہ ذکر نہ کریں، اور ہمارے نمبر زیادہ کر دیں، اور ہمیں ڈانٹا نہ کریں. اس کی تو زیادہ ڈانٹ آئے گی کیونکہ وہ اور زیادہ آگے آ گیا، سمجھ آئی نا؟ تو گویا کہ تحفہ کیا ہے؟ جس میں نمبر ایک ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا. کبھی آپ نے کسی کو دیا، کبھی کوئی آپ کو دے دے، نو پرابلم. دوسری بات ہے امید نہیں ہوتی، یعنی ایک روایت کہہ لیں کیونکہ اس کی سند کا اتنا مجھے چیک نہیں کر سکی، لیکن روایت یہ ہے کہ جس تحفے کا انتظار لگ جائے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے. جی آج ہم نے غیر محسوس طریقے سے بچوں کو اس کا عادی کر دیا، سالگرہ سب تحفے لائیں گے، پھر تحفے کھلتے ہیں، پھر تقابل ہوتا ہے، فلاں نے یہ دیا، اس نے یہ نہیں دیا، اچھا نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اور آج عید آ گئی ہے تو عیدی سب دیں گے، اور بچے مانگتے ہیں مجھے عیدی دیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ تحفہ مانگ نہیں سکتے، وہ دوسری صورت ہوگی. اگر آپ تحفے کو مانگتے ہیں نا تو وہ خرچ کی تیسری صورت گداگری لے آئی ہے. بھیک مانگتا ہے نا بندہ، لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ جس تحفے کو آپ مانگ لیں وہ تحفہ نہیں ہے، وہ بھیک ہے. آپ کب مانگتے ہیں جی؟ سالیاں مانگتی ہیں کہ ہمیں دودھ پلائی دیں، کیا یہ بھیک نہ ہوگی؟ آپ بہنوئی کی جوتی چھپا کے کہتے ہیں پیسے دیں، گھٹنا باندھ کے بیٹھے ہوئے ہم جانے نہیں دیں گے، جوتی چھپا دی دولہا کی کہ دو گے پیسے تو جائیں گے. اور عقل مند عورتیں بیٹھی شادی کی رسموں کے نام پر اتنے فضول کام کر رہی ہوتی ہیں. عام طور پہ میں یہاں آپ سے کہوں نا کہ کسی سے آپ 2 پاؤنڈ مانگ لیں تو آپ شرم کریں گے، لیکن رسم کے نام پہ آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں جب تک 2000 پاؤنڈ نہیں دے کے جائیں گے. آپ لے جائیں دلہن نہیں جا سکتی، سنی ہوئی ہے نا باتیں. تحفے کو رسم بنا کر ہم نے تحفے کی توہین کر دی، بیوقوفی بھی اور اس میں بدتمیزی بھی، گھر مہمان کی بےعزتی بھی ہو گئی، वो बेचारा लेके ही नहीं आया, अब वो सबके बीच में शर्मिंदगी। फिर अगली बात है कि तोहफों का डिस्प्ले नहीं करना। शादी पे मामू ये लाए हैं, मामू की तरफ से ये सेट आया है, खाला ने ये जोड़ा दिए। भाई दिए तो आपका मामला अंदर रखे, दूसरों को क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि मामू ये लाए हैं, अब देखे चचा क्या लेके आते हैं। ये तोहफे नहीं है, ये रस्में हैं। रस्म और तोहफे में बहुत बड़ा फर्क है। सारी बात का खुलासा, तोहफे को रस्म नहीं बनाना, रिश्वत नहीं बनाना, कर्ज नहीं बनाना कि अब दिया है तो वापस जरूर लेके। हमारा हाल यह कि शादी के मौके पे वो 10 साल पुरानी कॉपी खुलती है, किसको किसके मौके पे क्या दिया। तो भाई उनको तो जरूर बुलाना है। क्यों बुलाना है? क्योंकि हम आज से 1965 में गए थे उनकी शादी पे, तो हम 100 रुपया बरत के आए थे, तो वो भी अच्छे हैं तो आज 100 रुपये ही दे के जाए। हालांकि 100 रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ गई उसके बाद, 50 पे 51, 1 रुपया लगा के 50 की जगह 51, 100 पे 1 लगा के 101। और फिर जो शादियों पे अल्लाह माफी दे जो हमारी शर्मिंदगी है, आप देखिए कि घरों से जाने से पहले ही जो लड़की की अम्मा अब्बा माँ या खाला जाए वो एक बड़ा सा पटारा स्टॉइ वो जो पोस्टमैन के उस परस नहीं होता वो रखती हैं कि थैले भी तो डालने लिफाफे। अच्छा अब वो गए, अब रिसेप्शन पे खड़े हो गए, अब जो आ रहा है आप पहले देख रहे हैं और उनको भी पता है, लिखा हुआ था पहले जी कि नो बॉक्स गिफ्ट्स, बॉक्स वाले गिफ्ट नहीं चाहिए, नहीं पैसे चाहिए, सीधी सी बात है, ये भी एक मांगने का तरीका है। अब वो आए पता है थैला, अब वो हाथ में लिफाफा पकड़ा हुआ उन्होंने और वो आपको साथ पकड़ रहे हैं, नजर पहले ही दी, कहते क्या तकलीफ की आपने, और साथ कहते बेटा डाल लो इसमें। मुझे रिसेंटली एक शादी में जाने का इत्तफाक हुआ, इत्तफाक ऐसा हुआ कि शादी में हम सबसे पहले थे। खैर जब गए तो सेटिंग हो रही थी तो एक सिस्टर आई तो उनके हाथ में एक पिंजरा था, बड़ा खूबसूरत केज सा था। अब आपको भी आइडियाज मिल जाएंगे इससे तो और बात है। तो केज था वाइट सा सजा हुआ बड़ा फैंसी सा, तो मैंने नहीं गौर किया, मैंने कहा ये डेकोरेशन कर रहे हैं ये भी कुछ होगा। उसके बाद लोग आना जाना शुरू हो गए करते कराते, आधे से ज्यादा टाइम गुजर गया, उसके बाद कहीं दुल्हन आई खाना वाना खाए। साथ जो बैठी थी ना मेरी टेबल पे वो जानने वाली थी उनकी, तो वो कह रही कि चलो और लिफाफा दे आए ना, दुल्हन को सलामी दे, ये सलामी जो कह के तोहफा लेते हैं। तो उसने कहा कि उसकी अम्मा किधर है, यानी देनी तो थी वो उसकी सास के मुंह को, समझ रहे ना, बहू को दे दी, पता चला कि सास को, तो फिर लोग ऐसे वक्त में सास को ढूंढते हैं किधर आए, फिर उनको पकड़ा के देते हैं। तो उसने कहा सास की जरूरत नहीं है, आप स्टेज पे जाइएगा, वहां एक बड़ा खूबसूरत पिंजरा सा पड़ा हुआ है उसमें थैला डाल। अकलमंदी का फैसला था। उन्होंने क्या किया कि वो अब दरवाजे पे खड़े होके एक एक से वसूली करें, चंदा जमा करें और थैलों में रखे, फिर गुम जाते हैं। वो कह रही हाँ तुम्हें पता है फुला मौके पे किसी और उनकी बेटी को पकड़ा दिया था, बाद में वो थैला ही गुम गया। तो उसके बाद ये किया कि आज लड़के वाले घर से पिंजरा लेकर आए हैं और उसमें थैले डाल दो, घर जाके सास वो पिंजरा खोलेगी और सारे थैले खुल गए। आप सोचिए हम कितनी वनकों वाली किस्में शुरू कर लेते हैं। तो ये तोहफे नहीं है, आप जाएं शादी में बगैर तोहफे के, फिर दें जब दिल जाए। और आपने कभी फील किया बेचारे घर वाले, अमूमन तो पहले होता था घरों में शादी है, चलो दिया उन्होंने भी पहले ही पेटी खाली की होती थी उसमें डाली जाओ, कमरा रखा हुआ और एक खाला फूफी बड़ी एक्टिव होती थी, जो जोड़ा आया पकड़ा पेटी में डाल दिया, चलो वो समझ आ गई घर की बात है। एक बेटी की शादी पे दूसरी का जहेज बनता था, अब कौन पहनता किसी का। और दूसरी बात है कि बेचारे खुद शादी हॉल में आए होते हैं, ऊपर से आप बॉक्स उठा के लेके जाते हैं, वो उस वक्त कोई उनको होश होती है कि आपने क्या दिया? लड़की की माँ को शादी वाले दिन होश होगी कि क्या देना, जिस बेचारी ने एक पूरी फौज को एंटरटेन करना और गम भी है कि नाराज होकर ना चले जाएं, कि पूछा नहीं, बेवकूफी की बात है। आप पहले दे दे बाद में दे, मसला ये कि खाली हाथ जाएंगे तो शर्म आएगी। ये तोहफे नहीं है, ये रस्म है। आप किसी के बच्चे को क्या बगैर पैसे दिए नहीं देख सकते? आप किसी के घर जाने को दिल चाह रहे आप कहते नहीं कुछ है ही नहीं घर में, और इसका ऑपोजिट भी है, फिर आप किसी को बुला भी नहीं सकते घर में जब तक उसकी खातर ख्वाह इज्जत ना कर सके। तो जरूरत है इस बात की कि तोहफे को मोहब्बत का जरिया बनाया जाए, और यकीन करें आज हमारे यहाँ तोहफे मोहब्बत बढ़ाने का नहीं घटाने का जरिया बन गया। फिर जब वो खुलते हैं फिर कहते देखो क्या दे के गई हैं, पुराने जमाने का जोड़ा दे गई। एक सिस्टर थी तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जब भी कहीं खानदान में किसी को तोहफा दें वहां लड़ाई पड़ती है, और किसी का तोहफा कबूल ना करना ये भी तकब्बुर है, हम नहीं करते, बड़ी बात है। तोहफा हदीस में आता है कोई बकरी का खुर भी, अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई मुझे बकरी के खुर की पका के उसके शोरबे पे भी दावत दे तो मैं उसको भी कबूल करूंगा। अब हमारे लिए तो सिरी पाए बहुत बड़ी चीज होगी ना, उस दौर में आम थी, शिकार करते थे जानवरों के जिस्म के हिस्से काटते थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं इसको भी कबूल करूंगा। तोहफे की कीमत, ये भी एक इशू है हमारे यहाँ। कीमती तोहफे से हम अपनी इज्जत समझते हैं कि हमें बड़ी इज्जत दी है, हमें ब्रांडेड चीज दी है, और कोई बेचारा जरा छोटी सी दुकान से कोई चीज ले आए बड़े खलूस से भी ले आए कहते हैं लोग मुझे क्या समझा, यानी अगला जिस कीमत की आपको चीज देते हैं ना हम सोचते हैं ये हमारी कीमत पड़ी, कूल दे दें तोहफा दें। तोहफे में क्या होना चाहिए, बोझ ना पड़े। किसी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी नहीं कुछ पिछले एक दो वीक में, किसी ने कहा और बड़ा खूबसूरत जुमला था, उन्होंने कहा कि वो दो जिसको देने के बाद भूल जाओ, ना इतना महंगा दिया हो कि याद ही आता रहे हाय दे दिया वापस लेना दो बार भूल जाओ किसी को, आप छोटी सी चीज, कोई फूल है, कोई आप रुमाल है, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कि उसको खुशी होगी, बार दफा आप देखिए। एक और भी हमारे कल्चर में बहुत ही बुरी बात है कि रस्मी चीजें ही देते हैं। ईद पे आएंगे तो हर बंदा केक लेके आ रहा है, अब घर घर में लोग शुगर के मरीज हैं, खुद केक जो खाते नहीं वो लाके केक दे देंगे, अब वो केक एक दो दिन के बाद खराब होगा। मिठाई का डब्बा आना है, लड्डू ही बटेंगे, कोई खाता है लड्डू? शादी में जो विध बटती है, आप वो देखे जिस शादी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने इतने खूबसूरत किस्म के बैग्स बनाए हुए थे टेबलों पे ना, तो बाद में फिर लोग आके खोलने हैं, खाते हैं, सब ने अंदर से वो चॉकलेट खा ली और जो बादाम वगैरह, और एंड पे वो मखाने और जो वो चीजें थी वो पड़ी, और एंड पे वो लेडी आई तो सब इकट्ठे करके उसने इतना बड़ा बनाया बैग तो फेंक दिया। किधर गई वो सारी विध और मिठाई और कुछ? तो तोहफा वो दें काम का, क्या दें तोहफे में पता ही नहीं है लोग क्या पहनते हैं, पसंद नहीं आता। जो आपको जरूरत का लगता है अपनी, देखिए कुछ चीजें तो ह्यूमनली कॉमन है, अब मैं बात करूंगी तो आप सबने हंसना है, लेकिन ये भी मुझे नहीं पता कि चावल भी सारे एक ही किस्म के खाते हैं कि नहीं, आटा भी सब खाते हैं, कि आप किसी को तोहफे में किसी के घर जुगे तो आप एक केक लाते हैं, कितने का आता है भाई कोई बताए इधर, केक कितने के आते हैं? 20 से 25 पाउंड का, 10 का भी आ जाता है, ठीक है चलिए 10 से लेके 25 पाउंड का आप तोहफा देने चाह रहे हैं, यकीन से, क्योंकि अब मैं भी तो ग्रोसरी करती हूँ ना, इधर आई हूँ, 25 पाउंड में अगर आप ग्रोसरी करते हैं ना तो आराम से आपकी एक हफ्ता डेढ़, यानी हम 2 हफ्ते की इकट्ठी मोस्टली करें ना तो 40-50 बिल बनता है, ऐसे ही या इससे भी थोड़ा आगे पीछे होता होगा। आप 25 पाउंड में कितने दिन गुजारते हैं ग्रोसरी? 4-5 दिन की एक फैमिली की ग्रोसरी आती है, और वही कॉमन चीजें जो कभी खराब नहीं होती, आप वो ले दें। आप देखिए कि किसी को आटा ले देते हैं, आपने कितने दिन की रोटियों में अपना नाम डाल दिया, अब वो कहते हैं कोई फकीर है जो आटा दें, अब चावल दें और घी का डब्बा दें और ऑयल का डब्बा दें। देखिए बिलीव में किसी को आपने अगर एक चम्मच भी ऐसा दिया हुआ है ना जो वो इस्तेमाल करता है, हर दिन वो आपके खाने में शरीक है। आप किसी को चूल्हा देते हैं, पतीली देते हैं, तवा देते हैं, ऐसी चीजें दे जो किसी के घर की हैं। बाज दफा में देखे औरतों के घरों में बर्तन सबसे नकारे होते हैं, रंग बिरंगे जमे हुए कपड़े जोड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे पहनती हैं, आप कोई खूबसूरत सा ऐसा सेट दे दें कि जो उनका इस्तेमाल करके पुराना आप किसी को दे दें, ये यूज कर लें जी, आप रियलिस्टिक तोहफे दें, और वो दें जो खराब ना हो, यानी आप देते ना केक देने की बजाय बंद बिस्किटों के डिब्बे दे दें, खुद नहीं खाएगा कहीं जाएगा तो वो दे देगा, किसी को जूस दे सकते हैं आप, यानी हेल्दी चीजें दे सकते हैं जी।
मेरी भतीजी है और उसके ससुराल में सब कुछ होता है, हमें इतना अच्छा, वो कभी ये केक चीजें नहीं लेके कि वो घर की यूज की चीजें लेके जाते हैं एक दूसरे के।
जी बिल्कुल, मैं तो कभी अपना पैसा जाया ना करूं इस बात पे कि आपको मैं 25 पाउंड का केक दूं, मेरे से तो उम्मीद ना रखिएगा कि मैं आपके घर 25 पाउंड का केक लेके आऊं, उस 25 पाउंड में मैं फौरन सोचूंगी मेरा सदका जारिया क्या है, आज केक खाएंगे आधा बच्चे खाएंगे आधी, इन्होंने क्रीम वैसी फेंक देनी है बिन में, तो मुझे तो इनके एक दिन की नमाजों में हिस्सा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा जो उस केक की एनर्जी से पढ़ेंगे, तो मैं तो कभी नहीं दूंगी, मैं आपको केक का सामान कच्चा ले दूंगी कि आप उसके साथ जो मर्जी करें। ये कितनी अच्छी बात लिख रही है कि 5 years ago माई सिस्टर इन लॉ गिफ्टेड मी अ हैंड ग्राइंडर एंड इज स्टिल इन फुल एक्शन टिल टूडे। जी सबसे बेस्ट चीजें मेरे लिए किचन के इस्तेमाल की होती हैं, रोज खुलती हैं और रोज बंदा याद आता है जी। आप इरम टिनो, और आप जब वो टिन ओपनर खोलेंगे आपको इशरत बाजी याद आती होंगी, और गुस्से में खुल भी जल्दी जाता होगा, जिठानी है जी। आप कच्चा फ्रूट देंगे ना फिर वो गलने का डर होता है, कई लोग नहीं खाते, जो खाते हैं बहुत अच्छी बात है, टिन का फ्रूट दे दें जी, ऐसी चीजें जो खराब ना हो जल्दी। आप देखे ना एक बीमार है, आप उसके लिए फ्रूट ले गए, आप सारी क्लास ही बारी बारी गई उसके घर तो पूरी मंडी लग जाएगी फ्रूट की जी। बहरहाल ये एक सिर्फ सोच देना मकसद है इसमें और बहुत कुछ है, एक सिर्फ माल पैसे खाना पीना यही तोहफा नहीं, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना, किसी को आपकी जरूरत है टाइम देना, टाइम कितना कीमती है, 1 घंटा कोई काम करता है तो उसको यहाँ क्या देते हैं, 5-6 पाउंड देते होंगे ना बेचारी सफाई वालियों को भी, बड़ों की तो और बात है ना, तो आप बताइए कि 1 घंटा आप किसी को जाके दे आते हैं और उसका कोई दुख बांटते हैं, आप जाके काम कर दें घरों में, आपके कई ऐसे रिश्तेदारों में दोस्तों में बूढ़ी आंटियां होंगी नहीं काम कर सकती, कपड़े इसी कर दिए। देखिए मुस्लिम मुआशरा तो वाकई वो होता है कि जो हकीकत में था, अल्लाह के नबी ने ये काम करके दिखा दिया तो हम कैसे नहीं कर सकते, अपना और लोगों का माल जाया ना करें। 500 पाउंड का बरस तो नहीं किसी को देना गिफ्ट में, सही बात है बिल्कुल, यानी अच्छी बात दें, देखे हदीस में आता है ना कि अच्छी बात भी सदका है, किसी को गुड वर्ड्स दे दें, हेल्प दें, अच्छी मशवरा दें, हम उसमें स्ट्रिंजी होते हैं, हम कहते हैं अब हम क्यों बोले, हम किसी के घर जाते हैं हमें कई चीजें ऐसी दिखती हैं कि वैसी नहीं होनी चाहिए, हम कहते नहीं हम नहीं बोलते, नहीं बोलने बताएं आप अच्छा ये भी अच्छा ऐसे भी कर सकती हैं, ये भी अच्छा वैसे भी कर सकती हैं, किसी को आप कोई खाने की तरकीब बता सकते हैं, कोई चीज रखी हुई है, सेटिंग नहीं ठीक होती घरों की, आपको लग रहा है कि ये जगह तंग है, यहाँ से बार बार जो कूद रहे हैं ठीक नहीं, आपको लगता है ये इधर नहीं इधर हो, बता दीजिए, फिर अगले अगला माने ना माने ये उसकी मर्जी है, लेकिन तोहफों का जो मिजाज है वो बिल्कुल बदलने की जरूरत है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहती हैं कि अब मैं हर एक को तोहफा देना पसंद करती हूँ, एक वक्त हम लेना पसंद करते थे, और खास तौर पे देखिए इसमें बात साइड पे की थी कि बच्चों को ना दी करें, ये जो सालगिरह पे बच्चे तोहफे लेते देते हैं करते हैं ये बहुत बैड बात है, बात सफा इतनी आदत होती है बच्चों को कि जो घर में आता है वो तोहफा लाता है, कोई बाहर से आता है तो बच्चे उसका सूटकेस खोलते हैं, बैग कब खुलेगा, सूटकेस कब खुलेगा, भाई आपका इसमें क्या, मेरे साथ कई दफा ऐसा होता है कहीं भी जाए तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस सूटकेस में क्या है, उनको पता होता है थोड़ी देर में आंटी ने कुछ निकालना है और उन्होंने हमें देना है, और कोई भी बाहर से आता है नानी दादी तो बच्चे खुशी से तोहफे मांगते हैं, उस दिन ना दें। अच्छा मैं आपको अपनी एक बुरी आदत बताऊं कि जाते मैंने कभी नहीं तोहफा दिया, जैसे कहीं जाऊं पाकिस्तान जैसे जा रहे लेके तो इंसान जाता है, मैं सोचती हूँ आज तो मैं आई हूं तो मुझे ही देख के इतने खुश होंगे तो तोहफे की क्या जरूरत है, उस दिन दो जिसे मैंने वापस जाना है कि मेरी कमी इस तोहफे से पूरी कर लो, मैं शायद आखिरी दिन पे जाता है जिस तरह मौका हो, यानी जिसको मैं डिले कर सकूं, मैं इतनी बेसब्री नहीं कि फौरन खोल के तो जाके जल्दी दूं, बल्कि लोग मायूस हो चुके होते हैं फिर मिले तो ज्यादा खुशी होती है, जाते ही देंगे तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो बहरहाल आगे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा थी तुम रिबल यरबुआ फी अमवाल नासी, और जो कुछ तुम देते हो सूद पर ताकि बढ़े वो लोगों के माल में, फला यरबु इंदल्लाह। देखिए तोहफे पे हमने बहुत लंबी बात की अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन अगर आप इसका अगली आयत के हिस्से से कि वमा आते तुम इन ज़कात इन तुरीदू न बचुल्ला, तो थोड़ा सा चाहिए इसका तकाबुल भी करना कि सूद बिल मुकाबल ज़कात की यहाँ जो बात की गई, इस्लाम इसके बारे में हमें क्या कहता है। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके आयत नंबर 219 में कि सहाबा ने सवाल किया था कि अल्लाह के नबी हम क्या खर्च करें, वयसलून का माजा युनफिकून, तो जवाब क्या आया था, एक लफ्ज था कुलिल अफ, ज़ायदा ज़रूरत सब दे दीजिए। अब उस आयत को पढ़ के तो लगा कि हम कुछ अपने पास रख ही नहीं सकते, जो कुछ आपकी जरूरत से ज्यादा है उसको दे दीजिए। फिर तीसरे पारे में हमने बड़ी डिटेल से इन्फाक फी सबीलिल्लाह की सारी किस्में देख ली, उसी में सूद की और कर्ज की और दैन की और सारी आयतें गुजर गई। अब यहाँ बिल्कुल आप देखें कि जैसे आप कह सकते हैं कि कुरान अब अपनी तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, यहाँ फिर इस वक्त इस आयत का आना हम सबको इस चीज पे माइल करता है कि जो नियतें सूरत बकरा की वो आयतें पढ़ते वक्त की थी, या उस वक्त जो खौफ आया था, जब फीलिंग आई थी, क्या उन इरादों पे अमली जामा पे ना चुके हैं अब तक, अब तो वापस जा रहे हैं, अब तो अल्लाह ऐसे ही छोटे छोटे रिमाइंडर्स बस देगा, बड़ी बड़ी बातें तो गुजर गई कुरान की, अब असल बात यह कि वही करेगा जिसको अल्लाह की बात पे यकीन है, अल्लाह ताला हम सबको बताता है। और आप देखिए कि किसी के पास कोई भी माल आता है ना तो उसका बेस्ट मसरफ यह है कि वो उसको अपने लिए बढ़ाए ना कि दूसरों के लिए, जो चीज अल्लाह के रास्ते में जाती है जिंदगी में ही चली जाती है वो आपके लिए ज्यादा फायदा मंद है इसके निस्बत कि बाद में आपके बच्चे आपकी तरफ से सदका करें, बात क्लियर है। आप अपनी जिंदगी में कोई चीज अल्लाह के रास्ते में देते हैं और वही चीज बाद में आपके बच्चे देते हैं, पहली जिंदगी में खुद दी हुई जो है ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ जो जुमला है वो बड़ा खूबसूरत है कि फला यरबुवा इंदल्लाह, अल्लाह ताला के हाँ वो नहीं बढ़ता। तो अगर आप बचत करना चाहते हैं ना, आपकी सेविंग्स किस बैंक में होनी चाहिए, बारकले या कौन सा बैंक है, इधर आखिरा बैंक में, आखिरत का बैंक जो है उसमें ना फिक्र ना सूद मिलने का कोई खतरा, उसमें खुला सूद ले सकते हैं अनलिमिटेड, यानी दुनिया का हर बैंक है लिमिटेड, वो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हबीब लिमिटेड बैंक और यूनाइटेड लिमिटेड बैंक, आखिरा क्या है अनलिमिटेड बैंक, दुनिया के बैंकों में रखेंगे सूद मिलेगा जायज नहीं है क्योंकि जुल्म है, अल्लाह ताला कहता है तुम इधर दोगे तो तुम्हें कितने कितने हिस्से वहां ज्यादा मिल जाएगा, तो बजाहर इंसान कुछ सोचता है लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला का फैसला कुछ और है। चलिए आखिरी आयत है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें रिस्क दिया फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शयइन, क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई ऐसा है जो इनमें से भी ये काम कर सकता हो। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह की वो सिफात पेश कर दी कि जो दुनिया के किसी पीर फकीर और बुजुर्ग और किसी बड़े में नहीं हो सकता, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राजिक है, और अल्लाह मौत देने वाला है, और अल्लाह अल हई है, अल ममीत और अल हई, चार नाम है इसमें अल्लाह ताला के, अल खालिक, अर राजिक, अल ममीत और अल हैश, ये चारों सिफात बताओ दुनिया के किस इंसान में है? तो हल मिन शुरकाइकुम, फिर भी कोई शरीक है? अल्लाह ताला अगर जिसको आप कहना चाहिए कि रिवायती मुशरिकों को कहे तो उसमें लात मनात उज़्ज़ा का नाम ले लीजिए, हैं जो तुम में से ये कोई काम कर सके? खालिक मालिकों, और अगर आज फी जमाना इंसानों का शिर कर लीजिए, और जो पिछली आयतों में बात चल रही है रिश्तेदारियों का और लेन देन का मामला, तो अल्लाह कहता है सारी दुनिया के लोगों को खुश कर लो, हल मिन शुरकाइकुम मैं यफअलु ज़ालिका। सर में दर्द हो जाए तो कोई ठीक नहीं कर सकता, मौत का वक्त आ जाए तो कोई उससे निजात नहीं दे सकता। तो लिहाजा सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बहुत बुलंद व बरतर इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। ज़रूरत है इस बात की कि सबसे कट के उस रब पे नजरें लगा लो। ये था पूरे सबक का थीम। एक रब के फैसलों पे यकीन कर लो, एक रब के फैसलों पे राजी हो जाओ, फिर देखो कि तुम्हें रब दूसरों का मुख्ताज भी नहीं करेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों के किबले ठीक हो जाएं। मैं सोचती हूँ कि हम दुनिया से जब जाएं और बाद में हमें ये सारी बातें पता चले वहां जाके कि असल जीने का तरीका तो ये था, तो हम कहें हाय अफसोस, ऐसी जिंदगी जाया कर दी। जैसे कभी कभी मैंने देखा है साथियों को भी कि जब कुरान पढ़ते हैं और कई चीजें मिलती है, जैसे आज तोहफों की बात है, रस्म और रिवाज से आजादी की बात है, तो लोग कहते हैं हाय हमने अपनी जिंदगी इतनी जाया कर दी, इतनी देर से क्यों पता चला, हम तो इतना हम पे इतना काम पे, हमने तो इतना लोगों को खुश रखना चाह। लोग फिर खुश नहीं हुए, उतने ही ज्यादा नक्स निकालेंगे जितनी ज्यादा आप उनको चीजें देंगे, थोड़ी देंगे एक चीज देंगे एक नक्स निकलेगा। तो जरूरत है इस बात की कि इस किताब की तालीम को इंसान अपनी जिंदगी में इस तरह जरूरी कर ले कि जिस तरह जिस्म में खाने की जरूरत है। एक छोटा सा सवाल था जो आखिर में आपके सामने रखूं, इन्होंने पूछा क्या रहमा का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज है? यानी जो आयत में हमने पढ़ा था कि शौहर और बीवी के बीच में अल्लाह ताला ने मवद्दत व रहमत रखी, देखिए रहमा जो है ना ये मरसी है, रहम है, पिटी फीलिंग है। आप किसी के लिए अगर मोहब्बत नहीं भी पाते, देखिए दिल अल्लाह के हाथ में है, फितरी तौर पे किसी बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हो सकती, इट्स ट्रू, और फितरी तौर पे किसी शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि मोहब्बत अल्लाह के हाथ में नहीं डली। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अब आई लव यू नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं हिलता, तुम्हारे दिल में गुदगुदी नहीं होती इसको देख के, तुम उसके लिए इमोशनल नहीं हो, लेकिन रहम के जज्बे के तहत अब इस गाड़ी को चलाते रहो, ठीक है? तो इसको आप कॉम्प्रोमाइज कह लें या दूसरे के भी हालात को देखें। जैसे मिसाल एक औरत है, आप उसको अपना मियाँ अच्छा नहीं लगता या वट सो एवर, या उसमें कोई ऐब है या नक्स है, ये सोचती है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी फिर इसको तो कोई नहीं देगा बाद में, तो मैं इसके साथ लगी रहूं। या मर्द बीवी को सोचता है ये कि देखो ये औरत है, अगर इसको मैंने तलाक दे दी छोड़ दिया तो इसका आगे कोई नहीं बनेगा, मैं इसको भी रहने देता हूँ, मैं एक और शादी भी कर लेता हूँ, तो फिर ये रहमा होगी। अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।